अर्पा रेडियो द्वारा प्रस्तुत है टॉकचीत विद अरुण सीजन वन में सुनिए देश के अलग अलग शहरों के रंगमंच कलाकारों के साथ रंगमंच से जुड़े विभिन्न विषयों पर सामूहिक बातचीत।
नमस्कार, सलाम, जय जोहार। अर्पा रेडियो के कार्यक्रम टॉकचीत विद अरुण सीजन वन में मैं अरुण भांगे आप सभी श्रोताओं और रंगकर्मी साथियों का स्वागत करता हूं। आज हमारे साथ टॉकचीत में शामिल हैं श्याम देवकर रायगढ़ छत्तीसगढ़ से, धनंजय शर्मा दिल्ली से, विवेक निर्मलकर दुर्ग छत्तीसगढ़ से। हम अपनी टॉकचीत शुरू करें इससे पहले आप सभी को कार्यक्रम में शामिल रंगकर्मियों का परिचय दे दें।
हमारे साथ श्याम देवकर जुड़े हैं रायगढ़ छत्तीसगढ़ से। श्याम रायगढ़ इप्टा के सह सचिव हैं, छत्तीसगढ़ इप्टा के कार्यकारिणी सदस्य हैं, पिछले 18 सालों से अनवरत रंगमंच से जुड़े हुए हैं, रंगमंच में सक्रिय हैं। रंगमंच पर अभिनय के साथ साथ मंच के पीछे भी अपनी सेवाएं देते हैं, लाइट डिजाइनिंग में इनकी विशेष रुचि है। श्याम जी आपका फिर से स्वागत है।
जी धन्यवाद।
हमारे साथ हैं विवेक निर्मलकर जी, मूलतः ग्राम पंधर दुर्ग के निवासी हैं और फिलहाल रायपुर में रह के रंग श्रृंखला नाट्य मंच के साथ में नाटक कर रहे हैं, नाटक सीख रहे हैं। रंगमंच में गायन वादन अभिनय के साथ साथ मंच के परे का काम भी करते हैं। कला इनको इनके विरासत में मिली है, इनके घर में भी गायन वादन का बहुत अच्छा माहौल है। ये अपनी संस्था के साथ बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और ये रंग श्रृंखला नाट्य मंच के मुझे लगता है कि एक प्रमुख स्तंभ की जैसे हैं। जैसा मैंने इनको देखा है कि एक छोटी सी चीज की भी जरूरत होती है किसी को तो वो सीधे विवेक जी को याद करते हैं, जो मंच के साथ साथ मंच के पीछे भी पूरी कुशलता के साथ पूरी टीम को थामे हुए हैं। तो विवेक जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है।
धन्यवाद।
तीसरे साथी हमारे साथ जुड़े हैं धनंजय शर्मा। धनंजय दिल्ली से हैं, दिल्ली में ही इनकी रंगमंच की शुरुआत हुई। राष्ट्रीय स्तर के कई नाम हैं, कई बड़े निर्देशक हैं, उनके साथ में इन्होंने काम किया है, लगातार काम कर रहे हैं और इनकी सीखने की ललक है कि ये वर्तमान में भारतेंदु नाट्य अकादमी लखनऊ में नाट्य प्रशिक्षण ले रहे हैं। अभिनय में इनकी विशेष रुचि है, ये बहुत अच्छा गाते भी हैं। धनंजय जी आपका भी स्वागत है।
धन्यवाद।
आप सबके परिचय के साथ हम अपनी बातचीत आगे बढ़ाते हैं और आज का जो विषय है ये विषय पर्सनली मैं इसमें इंटरेस्ट रखता हूँ कि मंच के पीछे काम करने का अपना एक मजा है, अपना एक आनंद है। और सबसे बड़ी बात जो मुझे लगती है, मंच पर जो काम करते हैं, जो अभिनय करते हैं, उनके लिए बहुत सारे रास्ते खुले हुए हैं आगे। शायद वो थोड़े से टफ हो सकते हैं, पर जो मंच के परे काम कर रहे हैं उनके पास संभावनाएं ज्यादा हैं, उनके पास अपॉर्चुनिटी ज्यादा है, उनके पास ज्यादा रास्ते खुले हुए हैं। इस पे आप प्लीज अपने विचार रखिएगा। तो मैं सबसे पहले चाहूंगा विवेक निर्मलकर जी पंदर गांव दुर्ग से हैं, वो अपनी बात रखें प्लीज। विवेक जी
सर, मंच के परे हमारे पास अपॉर्चुनिटी इसलिए भी ज्यादा है कि एक कैरेक्टर अगर हम एक नाटक पे कर रहे हैं और जरूरी नहीं कि दूसरे नाटक पे हम उस कैरेक्टर के लायक बैठे या हम पे भागीदारी ना कर पाए, लेकिन जब हम मंच के परे काम करते हैं तो उस कैरेक्टर को एस्टेब्लिश करने के लिए एक एक चीज हम उस पर जोड़ते हैं, चाहे उसकी प्रॉपर्टीज हो या फिर कोई अगर सेट डिजाइन कर रहे हैं तो। और मुझे तो बहुत मजा आता है सेट डिजाइनिंग ये सब करने में, ज्यादातर एक्टिंग करने के बजाय, हालांकि मैं करता हूँ लेकिन उसमें मजा ज्यादा आता है। और उससे ही वो कैरेक्टर स्टेब्लिश होता है, वो हमारा नाटक जो पॉइंट है, मेन जो पॉइंट है वो उसी से ही निकल के आता है, चाहे लाइट से हो मंच के परे या फिर कॉस्ट्यूम है उसका, देन उसका डिजाइनिंग।
वाह, ये आपने जो बात जिस बात से शुरू किया ये मुझे बड़ी अच्छी लगी बात। कोई एक अभिनेता है, जरूरी नहीं कि उसकी जरूरत नाटक में हर बार हो, उसके कद काठी और उसके चलने फिरने सबका अपना अपना एक स्ट्रक्चर होता है, तो हो सकता है कि किसी नाटक में उसकी जरूरत हो, किसी नाटक में उसकी जरूरत ना हो, पर जो तकनीकी पक्ष के लोग हैं उनकी जरूरत हमेशा बनी रहेगी। वाह, बहुत बढ़िया विवेक जी, बहुत अच्छी बात कही आपने। इसी विषय की आगे की कुछ बात करने के लिए धनंजय जी दिल्ली से हैं। धनंजय आप क्या कुछ जोड़ेंगे इस पर?
ये जोड़ना चाहूंगा कि एक अभिनेता रंगमंच से अगर आप बात करें हम जी, तो रंगमंच में अभिनेता तो हम लोग बहुत आसानी से बहुत ज्यादा हम लोग हाईलाइट कर देते हैं, लेकिन एक रंगकर्मी को सर्वगुण संपन्न होना बहुत जरूरी है, क्योंकि वो जो गुण उसके अंदर होगा ना वो उसके अभिनय में भी दिखेगा। और मंच पर है तो सबसे जरूरी विधा है जो आपको आनी ही चाहिए, उसमें आप सेट डिजाइनिंग ले लीजिए, मेकअप ले लीजिए और कॉस्ट्यूम ले लीजिए, ये सारे गुण जो है अभिनेता के अंदर भी होने चाहिए। और जहाँ तक बात करें अपॉर्चुनिटीज की, तो मुझे लगता है कि ओपन कॉरिडोर बन चुका है आज की डेट में बैक स्टेज का जो है, और ये हर जगह काम होती है चीज, हर जगह। क्योंकि अभिनय सिर्फ आपको अभिनय आप रंगमंच में अभिनय करेंगे या फिल्मों में या नाटक में करेंगे, लेकिन ये जो बैक स्टेज वाला जो कॉरिडोर है ये हर जगह के लिए खुला है आज की डेट, हर जगह के लिए।
जी बिल्कुल, ये आपने धनंजय जी बड़ी अच्छी बात कही कि रंगकर्मी को सर्व गुण संपन्न होना बहुत जरूरी है। वो जितना ज्यादा खुद को एक्सप्लोर करेगा, जितना खुद के अंदर बहुत सारी चीजें ढूंढेगा, वो उतना बेहतर हो पाएगा, वो ज्यादा से ज्यादा चीजों के लिए खुद को तैयार कर पाएगा। धनंजय जी के बात के साथ, विवेक जी के बात के साथ हम जोड़ते हैं श्याम जी को। श्याम देवकर रायगढ़ से हैं, रायगढ़ छत्तीसगढ़ से। श्याम जी, आपने विवेक जी की बात सुनी, धनंजय जी की बात सुनी, इसमें आप इन दोनों के साथ में आपको क्या लगता है कि बैक स्टेज का कितना क्या एडवांटेज है और वो उसका क्या आनंद है, आपको क्या लगता है?
हाँ, कि बहुत से जितने भी मतलब नए जो कलाकार आ रहे हैं वो थोड़ा सा बैक स्टेज से बचने की कोशिश करते हैं। लोगों को यही लगता है कि हम फ्रंट में आएंगे तो हम लोगों को दिखेंगे, मगर ऐसा नहीं है। जब तक कि आपके पास बैक सपोर्ट अगर ठीक से नहीं होगा तो आप कभी भी फ्रंट में भी आके आप अच्छे से कर लोगे, ये सोचना गलत है। बहुत से लोगों को यही लगता है अभिनय करने से कि हम एक्टर बन गए हैं। आप समझिए, रंगमंच करना है, रंगमंच के लिए आपको बहुत समय देना पड़ेगा, तब कहीं जाके निखार। आज भी जितने भी बड़े कार है रंगमंच के, वो यही बोलते हैं कि हम अभी भी सीख रहे हैं और आपको हर रोज कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलेगा।
जी जी, आपने जो बात कही कि लगातार प्रैक्टिस करने से हम कुछ बेहतर काम कर पाएंगे,
हर चीजों के साथ आप जुड़ते जाएंगे तो आपका खुद का भी आत्मविश्वास बढ़ेगा और आपके लिए भी कुछ नई चीजें समझ में आएंगे किसी भी एक विधा में। मतलब अगर मैं जैसे लाइट डिजाइन करता हूँ, मैं खाली अगर लाइट डिजाइन ही करते रहूंगा तो मुझे एक्टर का व्यू नहीं समझ में आएगा, मुझे सेट डिजाइन के बारे में कुछ नहीं पता चलेगा, मुझे मेकअप के बारे में कुछ नहीं पता चलेगा। तो मेरी भी ये जवाबदारी बनती है कि मैं हर चीजों को समझने के लिए थोड़ा 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 उन सब चीजों का भी समय दूं। अगर मेरे को अगर रंगमंच में जुड़े रहना है और लंबे समय तक के काम करना है तो
जी 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 जी, तो सारी चीजों में थोड़ा सा इन्वॉल्वमेंट अपना रखना ही चाहिए चीजों को समझने के लिए कम से कम। तो ये तो हुई बात मंच के परे की, जो हमारे अर्पा रेडियो के जितने श्रोता हैं उनके लिए रंगमंच को लेके आपकी ऐसी कोई बात जो हमारे अर्पा रेडियो के माध्यम से आप श्रोताओं तक पहुंचाना चाहें।
मुझे लगता है रंगमंच कलाकारों के समूह का एकता का परिचय होता है।
जी,
क्योंकि एक विधा से ही नहीं सभी विधा के लोग आके एकत्रित होते हैं, तब कहीं जाके किसी एक नाटक का निर्माण होता है। इसमें बहुत से रंग जुड़े रहते हैं अलग अलग, तो उसमें बैक स्टेज में भी होते हैं, कुछ कलाकार अपने साथ स्टेज में भी काम करते हैं। जैसा एक राइटर का भी कुछ लिखा होता है, फिर एक निर्देशक उसको अपनी कल्पना के साथ पिरोता है, फिर एक एक्टर आता है, फिर उसमें क्या बोलते हैं बाकी डिजाइन, फिर लाइट। इस कलाकारों का एक समूह है जिसका एक एकता का परिचय कराते हैं, जो मुझे लगता है ये मतलब जितनी भी विधा है सबसे खूबसूरत विधा में से एक, इसीलिए नाटक को भी बोला जाता है, जहाँ पे सामाजिक जो परिचय होता है एकता का साथ में काम करने का, वो सभी का एक ही जैसा रहता है, सबका मोटिव यही रहता है।
तो ये जो ग्रुप में काम करने का जो एक जज्बा है वो थिएटर में मंच के साथ साथ मंच के पीछे काम करने से भी वो बेहतर तरीके से हम काम कर सकते हैं, अपने काम को और ज्यादा बेहतर कर सकते हैं। इसके साथ में ही मैं विवेक जी को बोलूंगा, अपनी कोई बात हमारे श्रोताओं तक पहुंचाना चाहते हो?
जी जी बिल्कुल, मैं श्याम जी की बातों के साथ बिल्कुल समर्थन करूंगा कि आप ही जो आ रहे हैं थिएटर पे वो बचना चाहते हैं बैक स्टेज से, उनको लगता है कि बैक स्टेज क्यों करें हम, हमको एक्टर बनना है। लेकिन एक एक्टर को अगर तैयार होना है, जो श्याम जी ने कहा कि उसको अगर वो मेकअप जानता है तो उसको पता चलेगा कि उसका कलर टोन क्या है, उसको समझ में आ गया कि उसके में कौन सा मेकअप वो यूज कर पाएंगे, और अगर वो सेट डिजाइनिंग करेगा तो उसको समझ में आएगा और उसको वो फील कर पाएगा, उस जगह को वो फील कर पाएगा। अगर वो खुद सेट डिजाइन कर रहा है तो उसको फीलिंग आएगी उसकी, अगर वो नहीं किया है, किसी और ने सेट डिजाइन किया, हम जाके वहां बैठ रहे हैं तो केवल वो एक मतलब मूर्ति के जैसे लगेगा, जैसे हम बाहर से गणेश लेके आते हैं बैठा देते हैं,
वो लाइव नहीं हो पाएगा उसके साथ में, उसका
लाइव उसका जुड़ाव नहीं हो पाएगा। तो उस चीजों के जुड़ाव को रखने के लिए हमको बैक स्टेज में जो भी वर्क है उसको खुद समझना पड़ेगा, एटलीस्ट अगर हम कर नहीं रहे तो हम साथ देखिए तो उसकी समझ पड़ेगी।
बिल्कुल, उसका सारी चीजों के साथ में लगाव होना जरूरी है किसी भी एक्टर का बैक स्टेज में, चाहे वो मेकअप हो, कॉस्ट्यूम हो, प्रॉप हो, उसके साथ में उसका जुड़ाव होना जरूरी है। बिल्कुल,
जैसे भी रंगमंच हर चीजों को महसूस कराता है कि आपको सिर्फ बताना पड़ता है कि ये चीज है, आपके दर्शक उसको फील करते हैं।
जी वो आप पे भरोसा करते हैं, तो आपको वो भरोसा दिलाने के लिए आपको पहले खुद भरोसा करना पड़ेगा, उसको फील करना पड़ेगा, उसके नजदीक जाना पड़ेगा, उससे जुड़ना पड़ेगा। धनंजय जी अभी आपने विवेक जी की भी बात सुनी, श्याम जी की बात सुनी, इसके साथ मैं आपसे जानना चाहूंगा, आप लगातार काम कर रहे हैं क्योंकि आप दिल्ली में हैं तो बहुत सारा थिएटर देखते भी हैं आप, बहुत सारे मौके मिलते हैं आपको, नए नए तरह के एक्सपेरिमेंट भी देख रहे हैं, नए नए तरह के समूह देख रहे हैं, बहुत बड़े भी नाटक देख रहे हैं, तो हमको कई बार उसके पीछे जो लोग हैं उनसे मिलने का, उनसे बात करने का भी मौका मिलता है। आप लखनऊ में हैं भारतेंदु नाट्य अकेडमी में, वहां पे काफी सारी फैकल्टीज आती होंगी जो आपको बैक स्टेज की भी नॉलेज देती होगी, सारे लोगों से मिल रहे हैं, जुड़ रहे हैं, देख रहे हैं, तो आप अपने अनुभव के साथ में क्या लोगों को बताना चाहेंगे रंगमंच को लेकर, रखें आप।
जी मैं ये कहना चाहूंगा कि अगर हम रंगमंच को, थिएटर को एक बॉडी की तरह देखें तो बैक स्टेज जो है वो उसकी स्पाइन हो गई, वो रीढ़ की हड्डी है, तो उतना मजबूत होना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर वो मजबूत नहीं होगी तो बॉडी खड़ी नहीं हो पाएगी, समझ रहे हैं आप मेरी बात।
जी 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 बिल्कुल बिल्कुल,
जितने भी ये जो संस्थान है हमारे देश में जो प्रशिक्षण देते हैं, तो यहाँ पे सबसे पहला जो आधार रखा जाता है वो मंच पर एक ही रखा जाता है, जितने भी इंस्टीट्यूट हैं यहाँ पे सबसे पहले जो है आपको इन्हीं सब चीजों के जरिए आपको आगे बढ़ाया लेके जाया जाता है, पहले आपको बैक स्टेज कराया जाएगा, सारी चीजें समझाई जाएगी। और दूसरी बात, जहां तक आपने कहा कि जितने नाटक होते हैं एक्सपेरिमेंटल नाटक होते हैं दिल्ली में भी, तो एक्सपेरिमेंटल नाटक जितने भी हैं उनपे अगर कहें कि उनकी जो एस्थेटिक वैल्यू जो बढ़ती है, या उनका जो भी आप ये कहें कि उसमें जो भी बदलाव है या जो भी उनमें खासियत है, वो अभिनय के बलबूते तो है ही है, लेकिन बहुत बड़ा रोल जो है बैक स्टेज अदा करता है, किस तरह वो एक अलग तरीके का मंच निर्माण कर दें या क्या कोई अलग तरीके की कॉस्ट्यूम लेकर आए, जो बहुत बड़ा रोल बैक स्टेज का है। अगर मैं ये मेरी दृष्टि से अगर देखे तो मैं मानता हूँ कि बैक स्टेज का बहुत बड़ा रोल है,
वो पूरा माहौल क्रिएट करने में या उस माहौल को बनाने में,
वो तो है ना, बैक स्टेज के बगैर तो अधूरा है, मतलब अगर अभिनेता अगर शरीर है तो बैक स्टेज आत्मा है।
ये बड़ी अच्छी बातें निकल कर आई हमारी बातचीत में। एक जो बहुत अच्छी बात विवेक ने शुरुआत में एकदम बोली, क्योंकि आजकल जो लोग आ रहे हैं वो बैक स्टेज की वैल्यू को शायद नहीं समझ रहे हैं, या ऑन स्टेज होने का एक अपना ग्लैमर है तो उसका एक अपना आकर्षण भी है, उसमें लोग खींचे चले जाते हैं, इसलिए शायद मंच परे या बैक स्टेज वो समझ ही नहीं पाते हैं उस तरह से। लेकिन विवेक जी ने एक बहुत अच्छी बात बोली कि हर नाटक में किसी एक अभिनेता की जरूरत पड़े ना पड़े, पर एक जो टेक्निकल जो हमारे हैंड्स हैं, जो बैक स्टेज करने वाले जो लोग हैं, उनकी जरूरत हर नाटक में हर बार पड़े। इसलिए एक्टर को जरूरी नहीं कि पूरा काम वो सीख ले, हर डिपार्टमेंट का उसको काम करना है, पर थोड़ी बहुत नॉलेज तो उसकी होनी ही चाहिए, उसकी पकड़ उन चीजों में होनी चाहिए, ताकि वो कभी जरूरत पड़े तो वो अपनी चीजों को, अपने काम को आगे बढ़ा। हम उम्मीद करेंगे कि हमारे श्रोताओं तक बहुत अच्छी बात पहुंची होगी।
इस बात के साथ आज हम अपनी टॉकचीत को यहीं विराम देते हैं, अगली टॉकचीत तक। मैं अरुण भांगे अरपा रेडियो की तरफ से आप सभी श्रोताओं और रंगकर्मी साथियों का धन्यवाद करता हूं और दुआ करता हूं कि आप सभी स्वस्थ रहें, मस्त रहें और जबरदस्त रहें।